नमस्कार।
एमपीजी के एंड करेंट अफेयर्स ऐप पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार पर चर्चा करेंगे, पाइप जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित होगा।
पावर्ड बाय रामकेश एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, वो पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, किंतु कालांतर में भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति और व्याप्त अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, 1764 बक्सर का युद्ध तक अंग्रेज अपने अधिकांश यूरोपीय तथा बंगाल जैसे प्रमुख देशी प्रतिद्वंद्वियों का उन्मूलन कर चुके थे, अतः भारत अब ब्रिटिश विस्तार के लिए एक मुक्त क्षेत्र था। इसी दौर में अंग्रेजों ने अपनी भारत विजय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिनका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में भी अनुसरण किया। अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत में एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार किया। अब ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित कारणों को जानते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलेजली और डलहौजी प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अदूरदर्शिता ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली, वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की, विलेजली ने उस इमारत को पूरा किया और डलहौजी एवं अन्य गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे बड़े युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों, रणनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई, जो निम्न है। लॉर्ड क्लाइव की द्विशासन की नीति, विलेजली को सहायक संधि की नीति, लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति या हड़प नीति। पावर्ड बाय ड्यूबवर्स। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वही लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी से अभिप्राय भूमि का वसूल करना और भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, किंतु नवाब के सभी अधिकार छीन लिए गए। अब वह स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन से ब्रिटिश कंपनी को लाभ। बंगाल में जिस समय द्वैध शासन स्थापित किया गया, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो वह उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता। ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी व कर्मचारी ऊंचे वेतन पर रखने पड़ते, इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब से कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने से और प्रशासन व अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। क्या थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड वेलेजली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों में सक्रिय एवं सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को नष्ट किया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डूले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप वेलेजली ने ही दिया। सहायक संधि की विशेषता। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपने सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। पावर्ड बाय ड्यूबवर्स। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सहायक संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव। सहायक संधि प्रणाली जहां एक ओर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वही देशी राज्यों को इस प्रणाली ने अत्यधिक हानि पहुंचाई। निःशस्त्रीकरण एवं विदेशी नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देशी रियासत के शासक नामात्र के शासक बनकर रह गए एवं उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए। अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। ऐसे में देशी शासक अकर्मण्य एवं विलासी हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि कमजोर हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। नोट: इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। क्या थी लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति। 1848 से 1856 का काल ब्रिटिशकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। वो बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई, वो उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीतियों से भिन्न थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति का अभिप्राय। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है और धर्म एवं परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यपगत सिद्धांत को नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को ये कहकर अमान्य करार दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनर्स्थापित किया था।